हाय एवरीवन, मेरा नाम जयेश है और ये मेरा पॉडकास्ट चैनल है। मेरे पहले गेस्ट है वर्स, जो कि एक रैप आर्टिस्ट है, वो भी एक छोटे से शहर जम्मू कश्मीर से है। मैं भी एक छोटे से शहर अजमेर राजस्थान से हूँ, तो आई होप ये कॉन्वर्सेशन से आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बी नायाब। वर्स मेरे भाई,
यस भाई,
वेलकम टू द पॉडकास्ट।
थैंक यू सो मच।
आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं।
श्योर। मेरा होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर है, मैं जम्मू सिटी से हूँ और मुझे बॉम्बे में, आई थिंक अभी मैं बॉम्बे में मूव कर चुका हूँ 10 साल पहले, 2015 या 2014 के एंडिंग में मैं आया था यहाँ पे। तो मेरा होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू सिटी से हूँ। मेरी स्ट्रीट पक्की ढक्की है 18001, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ।
जैसे कि जम्मू से आप यहाँ पे आए, तो आते ही आप क्या सोच के दिमाग में आए थे कि मुझे क्या, जैसे कि अभी आप रैप आर्टिस्ट प्रॉपर्ली बन चुके हैं, तो आप ये थॉट लेके आए थे या फिर आप कुछ और ही माइंड में लेके आए थे?
एक्चुअली म्यूज़िक में मैं था पहले, मैं रैप में नहीं था, बट रैप में मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं आई थिंक 2004-2005 में, तब रैप का यहाँ पे माहौल स्टार्ट हुआ था। बोहेमिया, आई थिंक आपको पता होंगे
जी,
तो बोहेमिया पाजी ने जब स्टार्ट किया था तो वो सुनते थे हम वहाँ पे, तो तब मैं छोटा था, तो 2004 और 2005 में तो क्या ही एज होगी, तो उस हिसाब से वहाँ पे रैप कल्चर स्टार्ट हुआ थोड़ा थोड़ा। हम सुनते थे, हम वो मोटिवेट होते थे कि ये क्या है, क्या है, अच्छा लग रहा है सुनने में, बढ़िया मज़ा आ रहा है
जी।
तो उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर हैं पंडित श्री अमरनाथ जी, तो वो क्या, वो म्यूज़िक में थे और वो कथा वगैरह सुनाते थे। आपको कथा जैसे पता होगा कि आजकल जो हो रही है जैसे होती हैं, बट वो उस टाइम पे कथा सुनाते थे, तो आई यूज़ टू गो विद हिम जहाँ पे वो कथा चलती थी। वो पियानो पे सुनाते थे, पियानो बजाते थे, तो मेरा इंटरेस्ट वो तब से ही था कि वो स्टार्टिंग से ही था, जब से मैं मतलब लाइफ देखी है मैंने, जब से मैं जन्मा हूँ या जब से मैंने बर्थ लिया है, तो तब से मेरा कोई इंटरेस्ट था क्योंकि म्यूज़िक पहले से ही हमारे घर पे था। तो उसके बाद रैप जब आया तो रैप में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा मतलब ये होने लग गया कि ये क्या म्यूज़िक है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बजाते थे घर पर, स्पीकर्स ले लेते थे कि भाई ये बढ़िया बज रहा है, बोहेमिया पाजी का गाना, ये म्यूज़िक ले लेंगे, स्पीकर ले लेंगे, स्पीकर में बजाते थे, बूम बूम बजता था तगड़ा। फिर आहिस्ता 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 इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ कि भाई इसमें भी कुछ कर सकते हैं, तो मैं लिखता था, पहले मैं सॉन्ग्स लिखता था 2009 में, आई थिंक स्कूल टाइम में थे, तो जम्मू में था, तो जम्मू में क्या कि इतनी चीज़ें नहीं हैं कि हम कर सकें ये सब जो आज की डेट में हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर थी नहीं, वो टाइम पर वो माहौल ही अलग था, वहाँ पर चीज़ें कुछ और होती थी, जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का क्या किस हिसाब से चलता है, तो ये चीज़ें वहाँ पे थी नहीं इतनी, तो अपने माइंड में भी नहीं आता था कि हम शायद इसको प्रोफेशन बना सकेंगे।
ओके।
कि शायद मैं सिंगर बन सकता हूँ, आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी, तो क्योंकि इतना माइंड में था नहीं सीखेंगे या इसी को करियर बनाएंगे, क्योंकि माइंड में हमारे यही था कि जॉब करेंगे 24/7, वही है जैसे कहीं जॉब लग जाएंगे, 9 to 5 जॉब लग जाएगी तो वहाँ पर जॉब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट ऐसा ऐसा म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट हुआ। और 11th में, आई थिंक मैंने 10th 11th में मैंने रैप स्टार्ट कर दिया लिखना कि मैं ट्राई करता हूँ, तो वो मैंने तब लिखा था पहला रैप, आई थिंक मेरे को याद है 2009 के आसपास लिखा था मैंने, तो तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई है कि तब से मैं लिख रहा हूँ।
फिर मुंबई में आने के बाद आपका क्या एनकाउंटर रहा कि मुंबई जैसा बड़ा शहर, और आपके यहाँ पे कोई पहले से कोई जान पहचान के थे या कैसे आप यहाँ पे सेटल हुए?
यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि मेरे ब्रदर हैं, बड़े भैया हैं, तो वो एक्चुअली मेरे से पहले आए थे, 2012-13 में आए थे, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो घर वालों ने बोला था कि एक स्टडी करके वहाँ पे जाना, वो एज एन एक्टर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम किया एज एन एक्टर, पवन शर्मा नाम है उनका, तो उन्होंने काफ़ी काम किया, स्ट्रगल किया ये सब चीज़ में, फिर एंड मोमेंट में उनको थोड़ा स्विच करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रहने के लिए सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो सब चाहिए, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपनी जॉब में, तो वो अभी बैंकिंग में है, तो बैंक में जॉब करते हैं वो, तो उन्होंने फिर मुझे पुश किया कि तू भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद ही आना, तो इसलिए मेरा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, ताकि क्योंकि जम्मू में मेरे को ये सब चीज़ें मिली नहीं, स्टूडियो अगर ये सब मेरे को मिल जाता है इजीली या मेरे को पता चल जाती चीज़ें कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये नॉलेज मुझे वहाँ पे मिली नहीं, कोई था नहीं बात करने के लिए, कोई वैसा माहौल नहीं था, सब रैप तो सुनते थे, बट रैप करना किसी को नहीं था वहाँ पे, क्योंकि सुनने में सबको अच्छा लगता था और सबको यह था कि जॉब करनी है, शाम को पैसे बनाने हैं और उसमें पार्टी करनी है और रैप सुनना है और पार्टी करनी है और सो जाना है। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था कि रैप करना है और ये सब मतलब जॉब भी हो सकती है, ये प्रोफेशन भी हो सकता है। तो फिर मैंने अपना कंप्लीट किया, स्कूल वगैरह हाई सेकेंडरी में मैंने कंप्लीट किया, फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करी, उसके बाद मैं मूव कर दिया मैंने मुंबई में। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, बहुत सारी फील्ड में मैंने पहले मैंने आते ही रैप में हाथ नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए आपको पता, जैसे मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल सपोर्ट वो सब बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ें ये वो सब लेके मैं यहाँ पे आया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं सीख सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ और कुछ होगा आगे।
तो फिर जैसे कि आप इंडिपेंडेंट करते हैं तो कितना चैलेंजिंग रहता है कि अगर आप एक म्यूज़िक लेबल के साथ जुड़ते हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट करते हैं, तो क्या बेनिफिट्स भी हैं और क्या इसमें चैलेंजेस भी आपको फेस करना मिलता है?
डे वन से इंडिपेंडेंट ही हो अभी तक तो फिलहाल, क्योंकि लेबल तक मैं पहुंचा नहीं और मैंने अप्रोच भी नहीं किया अभी तक कुछ खास उनको कि मैं जा सकूं या मैं गया हूं उनके पास। मैं चाहता हूं कि वो मेरा कंटेंट देखे, मेरे गाने सुने, ताकि उनके चैनल तक मेरा गाना पहुंचे और वो सुन के मेरे यहाँ पे मुझे कॉल आए। तो ताकि मैं वहाँ पे, मैं ऐसे नहीं जाना चाहता कि मैं सिक्योरिटी गार्ड तक पहुँच गया और वहाँ पर वो मेरे को बोल रहा है कि सर से मिल नहीं सकते, तो मुझे वो चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में एंट्री तक नहीं मिलती है। तो वो लेबल वाली बात तो मुझे अभी इतने पता नहीं है, क्योंकि मैंने उनके साथ अभी लेबल एज ए लेबल किसी के साथ किया नहीं है। बट इंडिपेंडेंट बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि राइटिंग से लेके रिलीज वगैरह, वीडियो अगर करना है तो वीडियो पूरा प्रोड्यूस करना, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका मार्केटिंग देखना, पोस्टर देखना, डिज़ाइन देखना, ए टू जेड बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो वो सब मैंने यहाँ पे स्ट्रगल करते करते मैंने अपनी जॉब से सीखा है, क्योंकि मैं स्टार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉम्बे जब मूव हुआ तो रैप से तो मैं कमा नहीं रहा था, या ना तो मैं कमा सकता था एकदम से आके, तो कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ी उसमें। तो जॉब में मैंने एज अ कास्टिंग में मैंने जॉब करी, मैं आरामनगर में, आपको अगर पता होगा तो मैं आरामनगर में जॉब करता था, BWT करके ऑफिस है, तो वहाँ पे मैं जॉब करता था कास्टिंग में। मैंने एज अ असिस्टेंट एसोसिएट मैंने जॉब करी, मैंने बहुत सारी एड्स वगैरह करी। फिर उसके बाद मैंने जॉब स्विच करी ताकि थोड़ा सा ग्रोथ हो, थोड़ा सा इन जो भी प्रमोशंस अपने लग रहे हैं, इन पैसे लग रहे हैं उनके ऊपर मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को जॉब चेंज करनी पड़ेगी ताकि थोड़ा और अर्न कर सकूं और थोड़ा और उसमें इन्वेस्ट कर सकूं। तो ऐसा था कि फिर मैंने प्रोडक्शन में मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने प्रोडक्शन में मैंने जब काम स्टार्ट किया तो वहाँ पर मेरा थोड़ा अर्निंग थोड़ा सा बेटर हुआ, तो मुझे लगा कि ये मेरा अर्निंग सोर्स हो सकता है और ये मेरा प्रोफेशन बन सकता है, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट उठा के यहाँ से पैसा यहाँ पर डालूंगा तो मैं अपने गाने बनाऊंगा, गाने रिलीज़ करूंगा। क्योंकि बॉम्बे जैसा शहर है तो बॉम्बे में यहाँ पे आपको कोई मतलब कि गाली भी फ्री में नहीं देगा तो गाली फ्री में नहीं देगा तो लिरिक्स म्यूज़िक ये सब कहाँ से आएगा? तो ये सब लाने के लिए मुझे जॉब तो करनी पड़ेगी ना, तो घर से भी कितना मान सकता हूँ ना, वो चीज़ें मेरे को मतलब भैया ने मेरे को पूछ किया, उन्होंने सब दिया मेरे को। आज तक मेरे को अभी 10 साल हो गया, सोचो 10 साल में मुझे एक बार भी रेंट नहीं पे करना पड़ा है, क्योंकि मेरे भैया सब देख रहे हैं और मुझे खाने का भी देखना नहीं पड़ता कि घर पे खाना कितना है या क्या है, मेरे को उसकी टेंशन उन्होंने दी नहीं। तो मेरा फुल फोकस इस पर रहा कि मैं म्यूज़िक करूँगा और अपनी चॉइस का करूँगा, जो मुझे आता है, जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा फ्लो है, जो मेरा थ्रो है, मैं उसमें करूँगा और उसी को करूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो जैसे आपने बताया ना लेबल्स के साथ कैसा है
जी,
तो लेबल्स का क्या है कि उनका ना डिमांड रहते हैं, डिमांड इन द सेंस कि वो बोलेंगे कि इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए, ये वर्ड्स चाहिए, ये वर्ड्स चाहिए। तो मेरा 2-3 बार ही हुआ मेरा उनके साथ में, बट मेरे को ना वो उनका जमा नहीं कि, कि जो मेरा है, मेरा टैलेंट है, मुझे आपने चूज़ किया है कि मेरी जो आवाज़ सुन के ही मेरे को आपने बुलाया है, तो मैं उसी आवाज़ में मैं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मुझे बोल रहे हो कि भाई रफ्तार की तरह चाहिए या हनी सिंह पाजी की तरह चाहिए, तो हनी सिंह पाजी की तरह कोई गाना हो जाए, वो तो वो बना रहे हैं ना, तो मैं अपना बनाऊँगा। अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं अपनी चीज़ ही दूंगा ना आपको, प्रोवाइड करूंगा, तभी आपने मुझे बुलाया। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप उनको बुला सकते हो, तो मेरे को मत बुलाओ।
आपको याद है जब आपने पहला म्यूजिक वीडियो खुद का बनाया था या जब बनके आपके पास आया था, वो क्या फीलिंग थी कि ये फाइनली जो मैं सोच कर आया था वो मैंने अचीव किया है?
ये अभी रिसेंट ही हुआ है, एक्चुअली लास्ट ईयर ही हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, अभी इतना टाइम यहाँ पे हो गया, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था एक वीडियो करूँगा। तो आपको पता है वीडियो बनाने में, अच्छी वीडियो बनाने में और नॉर्मल वीडियो बनाने में डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, बहुत चीज़ों में आ जाता है। तो वो अभी लास्ट ईयर मैंने अभी एक सॉन्ग किया था मेरा गैंगस्टर करके है, तो वो मेरे माइंड में था, वो एक्चुअली एक लेबल के पास गया था गाना, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसा ऐसा एक गाना है, अगर तेरे को करना है तो तू अपने गाने भेज दे मुझे। तो मैंने 4-5 गाने भेजे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इसमें से ये वाले गाने ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो उनको वो जो अच्छा लगा वो मेरा लिस्ट फेवरेट था। मैंने बोला यार ये तो उल्टा हो रहा है, मेरा जो लिस्ट फेवरेट है वो इनको बेस्ट लग रहा है, और जो मेरे को बेस्ट लग रहा है वो इनको लिस्ट फेवरेट लग रहा है, ये तो उल्टा कुछ हो रहा है। फिर उनको जो अच्छा लग रहा था वो बोलते कि हमने किसी को सुनाया, इसमें कुछ चेंजेस हैं, इससे चेंजेस है। मैंने बोला भाई चेंजेस वेंजेस तो नहीं होंगी, रिलीज़ होगा तो एज इट इज़ होगा, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी तरह ही साउंड करना चाहिए। तो वैसा सीन था, तो वो वहाँ से मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ और ही हो रहा है, तो मेरा माइंड मेरे लगा कि ये मेरे को ही करना पड़ेगा लग रहा है। तो ये लास्ट ईयर मुझे क्लिक हुआ कि मुझे करना पड़ेगा अभी शायद से, क्योंकि ऐसे ऐसा बहुत टाइम निकल रहा है। तो वो गैंगस्टर जो ट्रैक था तो मैंने ठान लिया वो ड्रिल बीट पे है, थोड़ा फास्ट है, तो लोगों को लगता है कि फास्ट है या रैप है, ये कहाँ चलेगा, इतना कहाँ चलेगा, लोग समझ नहीं पा रहे। बट वो ये नहीं समझ रहे कि हर एक आर्टिस्ट का एक अलग जॉनरा है या अलग एक टैलेंट है, तो उनको वो करना है तो उनके साथ अगर करना है तो वो उनको करने दो, तो अपना घुसा रहे हैं तो या जो उनके वर्ड्स हैं वो डालने हैं, तो वो तो फिर वही बॉलीवुड वाली बात हो गई ना कि आप वर्ड्स दे रहे हो, कमर्शियल बनाना है तो कमर्शियल बनाने के लिए तो हम है नहीं, कमर्शियल अभी तो बन नहीं सकता। अगर आर्टिस्ट के ऊपर है ना, आर्टिस्ट का माइंड क्या है, आर्टिस्ट का क्या है सेंस क्या है, अभी क्या मूड है, ऐसा नहीं है कि अभी बोलोगे कि एक लड़की भी गाना बना दे, अगर मूड सैड है तो कैसे बनेगा।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का ना एक वक्त होता है,
राइट
तो म्यूज़िक का भी एक टाइम आता है, हर जॉनर को एक टाइम के साथ ही धीरे धीरे धीरे, जैसे आजकल रिमिक्स का दौर एक आया था बीच में, अब मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ना ये दौर और आएगा। सो आई फील कि आप फर्स्ट काइंड ऑफ फर्स्ट मूवर्स में हो, तो आज नहीं मे बी शायद एक साल बाद या 6 महीने बाद, जैसे कि पहले के टाइम पे शायद हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी पॉडकास्ट भी शूट करेंगे, तो सडनली बूम आया एंड देयर वाज एन ऑडियंस फॉर इट
ऑफ कोर्स।
तो मुझे लगता है कि जिस काइंड का म्यूजिक आप बना रहे हो तो उस जोन के म्यूजिक की भी ऑडियंस है, पर हाँ वो ऑडियंस आने में थोड़ा टाइम लगता है,
थोड़ा टाइम, हाँ वो है, क्योंकि अभी एक्सेप्ट करने में लोग जो हैं वो अभी इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही, या लिरिकल वो इतना वो नहीं है उनको, बस वही है कमर्शियल ग्रूवी जो क्लब में बजे बैंगर ठैम 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 पानी पानी पानी, मतलब उस तरीके के गाने उनको पसंद आ रहे हैं, तो बट वो लिरिकल वाइज नहीं जा रहे कि लिरिकल मतलब लिरिक्स को नहीं सुन रहे। जैसे कवाली में क्या होता है
जी,
कवाली में एक ही धुन चलती रहती है, बट वो जो लिरिक्स होते हैं वो लिरिक्स सुन के वाह वाह होता है,
करेक्ट।
तो रैप में भी वही है, बट लोग रैप को ना एज अ पता नहीं क्या समझते हैं कि वो बोलते हैं कि क्या तेज तेज बोल दिया, बट वो तेज बोल दिया बट उसकी एक लाइन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसका कुछ मतलब है,
रिदम भी है,
रिदम है, मतलब वो मतलब कुछ अलग जॉनर है ना, आपको बस उस सुनना नहीं पड़ेगा उसको बट समझना भी पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है,
करेक्ट।
हाँ, क्योंकि स्लो बोल के अगर वो आपको समझ में आ रहा है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा नॉर्मल जैसे सॉन्ग्स होते हैं, बट जैसे कवाली है वो बहुत स्लो चलती है
जी,
तो अब उसको बोल नहीं सकते ना कि स्लो क्यों चल रहा है तो वो रैप में भी एक पैटर्न है, रैप का एक पैटर्न है कि कोई स्लो करता है कोई फास्ट करता है, बट उसका एक जो भी है मतलब है ना, जो लिरिक्स हैं वो थोड़ा सा आप समझेंगे या उस पर ध्यान देंगे गौर करेंगे तो जाके आपको रैप अच्छा लगने लगेगा जो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
जैसे कि मैंने आपका म्यूजिक वीडियो देखा था तो उसका जो वीडियो क्वालिटी था, जो ऑडियो क्वालिटी था, वो लग रहा था कि कोई इंटरनेशनल कोई म्यूजिक वीडियो है ये। ये किसी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने इतना बड़ा गाना खुद प्रोड्यूस किया है। तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट?
वही था कि मैंने जैसे एक गाना किया था गैंगस्टर, मैंने बताया, तो मेरा वहाँ से यही था कि मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हुए थे जो मैंने सेविंग्स कर रखी थी, तो मेरा यही था कि मैंने DOP जो था प्रतीक शेट्टी, शाउट आउट टू प्रतीक शेट्टी, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो वो मेरी वीडियोस करता है, ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि अगर वीडियो करनी है तो मैं तेरे साथ करूँगा, तो हम क्वालिटी अच्छी देते हैं, बट तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये कैमरा लेते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो उसके बाद फिर लोकेशंस वगैरह मैंने डिसाइड करी कि ऐसे ऐसे करके ये कर सकते हैं, तो क्वालिटी में मेरा वहीं से DOP से भी आया कि ये हम कैमरा रखेंगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा कि इंडिपेंडेंटली हम कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से मेरा ये पहले वीडियो से ही होगा कि इसका अगला वीडियो जो है ना वो इससे बेटर होना चाहिए
जी,
उसका अगला वीडियो जो है वो उससे बेटर होना चाहिए। तो मेरा वो वहाँ से ही मेरा माइंड में बैठ गया कि मुझे ये वीडियो मतलब कि एक से एक मतलब क्वालिटी बढ़ानी ही है, कम नहीं करनी है। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो किया सिटी लाइट्स करके, आपने देखा हो शायद जी। तो वो सिटी लाइट्स का वीडियो जो है वो उसमें मैंने और क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करी है कि ताकि लोगों को और आउटपुट अच्छा लगे, इंडिपेंडेंटली जो मैं कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंटली जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मेरा पॉकेट है, जितना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, मैं पूरी क्वालिटी में डालता हूँ। मेरे पास अगर 100 रुपीज़ भी होंगे ना, मैं 100 का 100 का मतलब इक्विपमेंट लेके आ जाऊँगा। मैं नहीं पूछूंगा कि भाई ये क्यों यूज़ हो रहा है, मेरे को पता कि उसमें लेंस क्या है या क्या है उसका यूज़ है। क्वालिटी अगर मिल रही है मैं 100 का 100 डाल दूंगा, भले ही मैं वॉक करके घर पर जाऊँ, मैं क्वालिटी मतलब लेके आऊँगा। मेरे पास जितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, जितना पैसा है, मैं पूरा का पूरा डाल देता हूँ उसमें।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रैप आर्टिस्ट या फिर इस इंडस्ट्री में आना है, क्या राइट अप्रोच है?
आपको इंडिपेंडेंटली शुरू करना पड़ेगा इसमें। इसमें तो ना तो कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई ऐसा कोई मतलब कि कोई है ऊपर। जैसे बॉलीवुड में क्या होता है, ऑडिशंस होते हैं एक्टिंग के, मॉडलिंग के, तो इसमें ऑडिशंस कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। एक है हसल, जैसे टीवी शो है जो MTV हसल चलता है, वो एक प्लेटफॉर्म आया है, तो वहाँ पे भी लिमिटेड है। अभी वहाँ पे ऑडिशंस देके टॉप 15 होंगे, तो पूरे इंडिया में से टॉप 15 15 लोग ही उसमें जा सकते हैं, तो बाकी जो 15,000 लोग हैं वो क्या करेंगे? तो ये था कि जो बाकी के 15,000 लोग हैं उनको यही करना चाहिए कि जो वो लिख रहे हैं उसमें सुधार करें, उसको अच्छा लिखें, उसको प्रैक्टिस करें। वो जो म्यूज़िक है तो म्यूज़िक किस तरीके का होना चाहिए वो देखें, वो सुने, और अलग अलग आर्टिस्ट को सुने। ऐसा नहीं कि जो मेन स्ट्रीम है उनको सुन लिया, चार जन को सुन लिया और तुमको पता चल गया कि रैप क्या है, रैप कैसे होता है। उनको सुनो जो मतलब अनडिस्कवर्ड है। मैं तो उनको सुनता हूँ कि जो मेरे को नहीं दिख रहे,
ओके
ऐसा है। तो उनको सुनो, उनको सुन सुन के लिखो, अपनी प्रैक्टिस करो, लिरिक्स को अच्छे से रीड करो। तो ऐसा है कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करो, तो यही अप्रोच हो सकती है फिलहाल के लिए। तो
म्यूज़िक लेबल भी ये शायद आपका ही है जहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं,
राइट?
तो उसमें कोई स्कोप है कि अगर किसी नए बडिंग आर्टिस्ट को आना है तो दे कैन रीच आउट टू यू, दे कैन लाइक कि भैया इसमें कोई सजेशन है, या फिर अगर उसको रिलीज़ करवाना है तो आपका इन व्हाट वे यू कैन हेल्प दी अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज कोई ना कोई देख के आपको भी देख के इंस्पायर हो रहा है,
right.
वर्स भाई ने वीडियो बनाया है,
yes.
तो शायद कल मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, सो हाउ कैन यू हेल्प देम?
हाँ, मुझे एक्चुअली मैसेजेस आते हैं, DM आते हैं कि भाई ये जैसे आपने ये वीडियो किया है, इसमें नेक्स्ट वीडियो करोगे तो एज अ एडिटर आप चाहते हो तो मेरे को ले लेना। या बहुत सारे रैपर्स के मैसेज आ जाते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई कोलैबोरेशन के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि आप मुझे अपना वर्क भेज दो तो हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अगर एक जगह पे आ जाते हैं कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो हम करते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं भी इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ और आप भी करना चाहते हो तो मैं जुड़ सकता हूँ, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है उस चीज़ का। तो बहुत सारे DM आते हैं, जैसे एडिटर्स के लिए आ जाते हैं, रैपर्स के आ जाते हैं, अभी लास्ट मेरे को मिक्स मास्टर के लिए बहुत सारे आए, तो सब मेरे को बोल रहे थे कि हम आपका मिक्स मास्टर करना चाहते हैं क्योंकि हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें भी कुछ एक गाना चाहिए, हम भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, आपके ट्रैक्स में जुड़ना चाहते हैं। मैंने बोला ऑफकोर्स जुड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है, मेरे पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं, तो मैं उनको ट्रैक भेज दूंगा, हम कोलैब कर सकते हैं, एज अ कोलैब कर सकते हैं। और जो स्पॉटिफाई पे जाता है, प्लेटफॉर्म पे जाता है, तो वहाँ पे वो मतलब जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है या जो भी होता है वो वहाँ से स्प्लिट होता है ऑटोमेटिकली। तो अगर उनका वहाँ पे मतलब अकाउंट है वहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट होता रहेगा वहाँ से, जो भी है रेवेन्यू जनरेट होता है कल को। बट मैं उनको कभी मना नहीं करता हूँ, सामने से जो भी मैसेज आता है मैं उनको रिवर्ट करता हूँ। और अगर पॉसिबल हो सके, अगर सेम स्टेट कंट्री में बोल रहा हूँ, सेम स्टेट में है या सेम शहर में है तो हम कोलैब कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स कोलैब करेंगे। एक मैंने 2 साल पहले एक कोलैब किया था, उसका नाम, गाने का नाम था इंतज़ार,
ओके।
तो वो मेरे फ्रेंड के थ्रू मिला था, वो जो फ्रेंड था वो था दुबई में उसका, तो उसने मुझे दुबई से टेक्स्ट किया कि भाई आपका सॉन्ग बहुत सही लगा, बहुत ही ऐसा बढ़िया लगा, मैं भी जम्मू सिटी से हूँ, उसका नाम शुभ है, तो जम्मू से है वो भी, मेरी सिटी से। तो उसने मुझे बोला कि भाई एक कोलैब करेंगे, गाना करेंगे, तो उसने मुझे आगे से बना के भेज दिया अपना
जी
साउंड। मैंने बोला भाई मतलब ये है ना कि सामने से भेज दिया अपना काम करके, अब मेरे को बोल रहा है कि आप इसमें वर्क करके अपना ऑडियो डाल के, अपने लिरिक्स डाल के आप कंप्लीट कर दो भाई यार। तो उसने जैसे ही भेजा, मेरे को इतना खुशी हुआ कि यार सामने से मतलब कि कंप्लीट करके भेजा उसने अपना, तो मैंने अपना उसमें इनपुट डाला और उसको वापस भेजा, वो हमने रिलीज करा फिर। तो मतलब मैं कोई भी कंट्री में वो वहाँ से अप्रोच आती है तो मैं वहाँ पे भी कर लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम है तो रिकॉर्ड करेंगे और भेज देंगे।
तो भाई अभी जैसे कि AI इतना यूज़ हो रहा है, अभी मैंने भी ये ट्राई किया था।
अच्छा,
मैं खुद भी लिखता हूँ, तो जो मैंने शायरी और पोइट्रीज लिखी थी ना,
ओके,
उसको मैंने उठाया, मैंने सॉफ्टवेयर में डाला, उसने मेरे को गाना दे दिया। सिर्फ मेरे को जॉनर सेलेक्ट करना था कि ये मुझे बॉलीवुड चाहिए, जैज चाहिए, हिप हॉप चाहिए, टिपिकल बॉलीवुड गाना उसने मेरे को 2 मिनट में बना के दे दिया था। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, कि मतलब ये थ्रेट है या फिर हाउ कैन वी यूज इट एज एन आर्टिस्ट?
ये थ्रेट तो नहीं है, अभी जो भी चीज़ें आती हैं मार्केट में, जैसे इंस्टाग्राम आया तो सब बोल रहे थे कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फेसबुक आया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। वो एक हेल्प ही करता है आर्टिस्ट को, या जो भी है जनरेशन है उसको हेल्प ही करता है। जैसे जैसे नई जनरेशन आएगी वो नया कुछ ना कुछ आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें ही चलती रहेंगी। अभी AI आया तो उसमें बेनिफिट तो यही है कि आपको कंटेंट, अगर जैसे आपने बोला कि आपको 4 वेराइटीज़ मिल गई
जी,
तो एज इट इज़ आपको मिल गई, तो एज इट इज़ आप उठा के तो डालोगे नहीं, क्योंकि वो एज इट इज़ तो वो किसी और को भी जनरेट होके मिल सकती हैं।
आई थिंक सो ये बहुत यूनिक ही मिलता रहेगा।
हाँ, यूनिक भी मिल सकता है, बट वो ये हो जाता है कि वो AI का है। जब अभी जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना
जी,
तो उसमें ऐसा है कि अभी उसमें कॉपीराइट्स वगैरह का इशू इतना, शायद से जितना मेरी नॉलेज में है, कि इतना कुछ अभी इंटरफेयर नहीं हो रहा है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट उस पर आ जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा AI। जैसे कि मेरी आवाज़ है अगर, तो मेरी आवाज़ में अगर आपको सॉन्ग चाहिए, जैसे आजकल मार्केट में आपको पता ही है कि जैसे करण ओजला का सॉन्ग हो गया, तो उसकी आवाज़ में वो शुभ का सॉन्ग जो है वो आ जाता है AI से जनरेट करके
जी।
तो आप ये बोल रहे हो कि ये थ्रेट हो सकती है कि मेरा गाना कोई और बना रहा है या मेरी आवाज़ कोई और ले रहा है।
ये भी हो गया, एंड यू नो बहुत इजीली हो जाएगा, जो एक वो होता है ना चाम, कि हम आराम से टाइम लेके सोच के कुछ धुन बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ मुझे लिरिक्स भी चाहिए, मैं ChatGPT पे डालूंगा, मुझे लिरिक्स मिल जाएंगे, वो उठाया, मतलब उसमें मेरा कुछ इनपुट है ही नहीं,
इनपुट है नहीं है,
वो उठा के मैंने सॉफ्टवेयर में डाला, वो धुन के साथ मेरे पास मास्टर गाना रेडी हो गया है।
राइट,
बनाना 5 मिनट का काम है। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि जिसने मेहनत करी है, जिसने सोचा, जिसने बनाया, तो कहीं ना कहीं उस चीज को कैसे देखता है कि ये एज अ रेफरेंस पॉइंट भी क्या पता कोई यूज कर सकता है।
हाँ, एज अ रेफरेंस पॉइंट भी, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे 4 ऑप्शन आ गए, तो मैं उसमें से सुन सकता हूँ कि अगर मेरे को उसमें से कुछ वर्ड्स लेने हैं या उस तरीके का कुछ टोन चाहिए, तो अगर मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं म्यूजिक सुनूंगा, अगर उसमें से मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ आइडिया आ रहा है, तो मैं एकदम ब्लॉक हूँ। अगर मान लो कि मेरे को एकदम, कि जैसे राइटर्स ब्लॉक होता है, म्यूजिक ब्लॉक हो जाता है कि भाई क्या करें क्या बनाए समझ नहीं आ रहा, तो वो एक प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे जाके आपका जो आइडिया है कि आपको जैसे बूम बैप चाहिए, R&B चाहिए, R&B किस स्टाइल में चाहिए, तो आप उसमें डाल दो, तो आपको एक धुन आ जाएगी, सुन के आ जाएगा, उसको आप जनरेट करना है अपने आइडिया से, अपने तरीके से, तो वो आप खुद का इन्वेंशन उसमें डाल सकते हो। अगर आपको एज इट इज़ करना है तो वो तो अभी जैसा प्लेटफॉर्म है वो तो आप यूज़ करोगे यार, वो तो अभी मैंने वही बताया ना, इंस्टाग्राम आया तो अभी सब यूज़ करेंगे ही करेंगे
जी।
तो फेसबुक आया यूज़ करेंगे ही करेंगे, अभी कोई भी स्नैपचैट आएगा सब यूज़ करेंगे ही करेंगे, बट उसको वो एज अ थ्रेट नहीं मान सकते हम, थ्रेट वाला कुछ सीन नहीं है उसमें।
पर मेरा ये मानना है शायद आने वाले के टाइम में ना, जब सब चीज़ें ऐसा लगेगा कि एकदम परफेक्ट जा रही है, एक रिदम, मतलब मैं कोई वीडियो देखूंगा मुझे पता चल जाएगा ये AI से बना हुआ है।
हाँ, AI से बन रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अपना इनपुट उसमें डालना ज़रूरी है अगर आपको अपना बनाना है तो। वही आपने बात बोल दी खुद ही कि मेरे को पता चल जाएगा कि AI का होगा या AI का है, तो वो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि हाँ ये AI वाला सिस्टम है। जैसे आजकल कितने AI सॉफ्टवेयर से कितनी वीडियोस में कुछ भी हो रहा है
जी,
तो हमें पता चल जाता है। अब जिसको नहीं पता अभी, तो वो अभी कुछ नहीं कर सकते, उनको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। बट जैसे आपने बोला कि आपको पता चल जाएगा AI से जनरेट हुई वीडियो है, जैसे अभी पॉडकास्ट है
जी,
तो अभी इसमें मेरा फेस चेंज करके AI में आप कर सकते हो, कुछ और लगा सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, वही बोल रहे हो ना आप, तो वो सामने वाले को पता चल जाता है कि AI से किया हुआ है, अगर उसको इतनी मार्केट की नॉलेज है या वो इतना मतलब कि फ्यूचर में है, कि मतलब कि प्रेजेंट की एप्स अगर वो यूज़ कर रहा है तो इतना उसको नॉलेज होगा कि भाई AI के थ्रू हो रहा है। तो अगर इसको रियल करना है तो जो मतलब रियल आर्टिस्ट होगा ना, वो AI का उठाएगा ही नहीं कभी,
नहीं
वो AI में अगर जनरेट करके आइडियाज़ ले रहा है उतना शायद से कर रहा हो, क्योंकि एक अगर प्लेटफॉर्म कोई आया है तो हर कोई चाहता है कि मैं उसको ट्राई करूं, ऐसा कोई जो भी बोल रहा होगा ना कि भाई चैट जीपीटी यूज नहीं किया तो वो झूठी बोल रहा होगा। किसी ने मतलब लिरिक्स के लिए नहीं किया हो, किसी और यूज के लिए किया हो, बट यूज कर रहा है हर कोई।
करेक्ट,
हर चीज के लिए यूज कर रहा है। जैसे अभी प्रीमियर प्रो में फायरफ्लाई करके कुछ तो ऐप आया, ऑटोमेटिक पॉडकास्ट एडिट हो जाता है।
हाँ,
आपको पता है जो एआई का, हाँ, ऑटो मोड पे आया है, तो उसमें तो एडिटर का भी काम खत्म हो गया ना, फिर
कम हो गया।
तो बट एडिटर का काम खत्म नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ होंगे ना, उसके चीजें होंगी कि उसको अपना कैसे, उसको टाइम टू टाइम कैसे कट रहा है, या उसको कुछ एड ऑन करना है। हर चीज तो एआई नहीं देगा सेम टाइम पे,
वो आपकी हेल्प कर देगा।
हाँ, हेल्प कर देगा। अभी जैसे शेफ होता है और एक कुक होता है, तो कुक आपकी हेल्प करता है
जी।
शेफ होता है जो वो बैठा रहता है, उसको पता है कि ये कुक हेल्प कर रहा है, बट शेफ का नाम ही आता है। ये एआई वो है, एआई हमारे लिए कुक कर रहा है, हम उसके शेफ है, हम ही उसको चला रहे हैं।
बिकॉज मैंने भी अभी रिसर्च किया तो उसमें अभी तो प्रीमियर में और भी ऑप्शंस आ गए हैं कि आप सिर्फ आपके पास वीडियो है, मान लो जैसे ये हमारा इंटरव्यू है, बीच में अगर मुझे चाहिए कि ये फ्रेम मेरे को एक्सटेंड करनी है,
राइट,
उसको सिर्फ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, वो आपकी सेकंड्स आपको बढ़ाकर दे देगा।
यस यस, देखा मैंने वो भी। तो वो देखो, ये आपकी हेल्प ही कर रहा है
जी,
आपको वापस से शूट ना करना पड़े, वो चीज आपको एक्सटेंड करना है, आपका पैसा भी बचा रहा है अगर आपको वो चीज लेनी है
जी।
अगर आपको लगता है कि एआई वाली चीज आपके लिए काम कर रही है तो आप वहां से ले लो, अगर आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक नहीं लग रही है, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही है ये चीज, तो आप फिर शूट करो अपना वापस से, और वापस से वो अपना क्लिप्स एड ऑन कर लो, बट वो आपको एक एज ए हेल्पिंग हैंड आपके साथ रहेगा।
कहीं ना कहीं ये कॉस्ट एफिशिएंट भी काफी
है। कॉस्ट एफिशिएंट, वही बात है।
पहले के टाइम पे यही होता था कि लोग टीवी हो गया, या फिर किसी को अगर म्यूजिक में या किसी में बड़ा करना है तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रहते थे। यूट्यूब के कारण अभी इतने लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज मिल गई है आज के टाइम पे। यूट्यूब के कारण आपके पास एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है कि आप जैसा चाहे अपने आप को आप कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई
जो भी कंटेंट, अगर मैं खुद बनाना चाहता हूँ, कुछ भी बनाना चाहता हूँ, क्रिएटर बनना चाहता हूँ, आपके पास एक मोबाइल फोन चाहिए आपको
जी,
आप आज ही व्लॉगिंग शुरू कर दो
जी,
फूड ब्लॉग शुरू कर दो, कुछ भी शुरू कर सकते हो। लॉकडाउन में अभी जब भी लॉकडाउन हुआ था, मैं बॉम्बे में ही था,
ओके,
तो मैं वही सोच रहा था कि म्यूजिक बना बना के कितना म्यूजिक बना दिया। मैं सोचू क्या करूं कुछ अलग, तो मैंने भैया के लिए फूड ब्लॉग बनाए तो उनका चैनल बना दिया फूड ब्लॉग्स का। तो मतलब कि आपके हाथ में, आपको करना क्या, आप उसमें घुस जाओ और वो हो जाएगा। तो वो आपके मोबाइल पे है कि आप क्रिएटर बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आज की डेट में आपके पास, आप घर से ही बन सकते हो। वही मैंने बताया, म्यूज़िक की कोई लिमिट नहीं है कि आप इस कंट्री में हो, उस स्टेट में हो। लोग बोलते हैं हम यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, अरे वहाँ पर भी म्यूज़िक है ना भाई।
करेक्ट,
वहाँ पे भी म्यूज़िक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ से आए तो वहाँ म्यूज़िक था ही नहीं कभी लाइफ में, समझ रहे हो। तो वहाँ पे म्यूज़िक था, आपने सुना, तभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आपको करना क्या डिपेंड करता है ना। हर कोई रैपर नहीं बनना चाहता है, कोई कवाली आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई पॉप आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो जिसने जो सुना है, जिसके माइंड में जो आया, जिसको जो अच्छा लगा, उसने वो एक्सेप्ट किया और उसके पीछे भाग रहे हैं, वो सब कर रहे हैं।
मुझे ये जानना है कि आगे आप एज ए रैप आर्टिस्ट और क्या सोच रहे हैं, या क्या आप नया कुछ इसमें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, या ये आप आगे इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं आप।
अभी फ़िलहाल तो मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, तो इंडिपेंडेंट ही मैं सोच रहा हूँ कि इसको मतलब कि इतना लेके जाना है कि सामने से मुझे लेबल आके कि पूछे कि ये ट्रैक चाहिए और मैं उसकी कीमत बताऊँ, तो मेरे को उसको जब देना हो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से दूंगा, अपने राइट्स अपने पास रखूंगा, जो मुझे पता है कि क्या राइट्स होते हैं, कैसे देना है। क्योंकि लेबल तो आपसे जो एग्रीमेंट साइन कराता है वो आपको, आप पढ़ते नहीं हो वो टाइम पे, जब खुशी खुशी मिलता है ना, तो जब आप साइन कर रहे हो वो, मैं कहता हूँ कि सबको कि वो पढ़ो। क्योंकि मैं एज अ प्रोडक्शन भी मैं बहुत जॉब करता हूँ जैसे, तो मेरे सैलरी जो एग्रीमेंट आता है ना, मैं वो तक पढ़ता हूँ। वो 15-18 पेज का होता है वो एग्रीमेंट,
करेक्ट,
तो मैं वो 15-18 पेज का एग्रीमेंट पढ़ता हूँ ताकि मुझे उसमें पूरा पता चले कि भाई ये सैलरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली कल को। तो अगर लेबल आपके पास आ रहा है तो आप लेबल का एग्रीमेंट पढ़ो पहले। ऐसा मत सोचो कि पैसा दे रहा है वो, पैसा किस चीज़ का दे रहा है। अभी लेबल क्या करते हैं कि पैसा दे देते हैं, पैसा देने के बाद वो आपको 5 साल अटका देते हैं, 3 साल अटका देते हैं, क्योंकि उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपको 3 साल में 15 गाने रिलीज़ करने को मिलेंगे
जी।
बट वो लोग इतना ही पढ़ते हैं कि मिलेंगे, मैं यही कह रहा हूँ कि एग्रीमेंट पढ़ो, ये मिलेंगे कब मिलेंगे, हर मंथ एक गाना मिलना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए.
करेक्ट.
आपकी डील क्या है, आपका मतलब कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अगर आपको एक बार वन टाइम पैसा मिल गया, अगर आपको 3 साल के लिए, तो उसमें एग्रीमेंट में बंध गए तो आप क्या कर सकते हो, उसमें दूसरी जगह जा नहीं सकते. उसमें वो क्लॉजेस होते हैं कि अगर आपको किसी और लेबल के साथ जुड़ना है तो आपको ये मनी आपको पे करना पड़ेगा, फिर आप कोर्ट केस लड़ो, ये करो वो करो, ये सब चीज़ें नॉलेज लेने के लिए आपको मतलब इसमें घुसना पड़ेगा इंडस्ट्री में.
जी
ये सब चीज़ें मैंने गेन करी हैं ये जॉब करके, ये सब चीज़ें करके. बड़ी बड़ी फिल्में जो मैंने एज अ प्रोडक्शन करी हैं, जो मैंने जॉब करी है, वहाँ से मुझे सीख मिली है. तो ये मैं अपने पे इम्प्लीमेंट करता हूँ कि ये चीज़ें मेरे से गलती ना हो, और ये गलती मेरे से अब होती नहीं है, क्योंकि मैंने कम से कम लोगों के कितने एग्रीमेंट देख लिए, कितने अपने पढ़ लिए, कितना सब देख लिया. अब मेरे को पता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है, लेबल के पास कब जाना है, लेबल के पास जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि लेबल गाना ले लेंगे.
जी
आपका गाना, आपका कंटेंट, आप चाहते हो ना कि उस प्लेटफॉर्म पे चला जाए, चला हाँ, जाएगा
हाँ.
बड़ी बात नहीं है, मेरा भी चला जाएगा आज की डेट पे, बट वो कंटेंट वहाँ चला गया ना, वो उनका हो जाएगा.
करेक्ट.
क्योंकि वो मैं उनके पास जा रहा हूँ, वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं. तो अगर मैं जा रहा हूँ तो उनका जो क्लॉज है, उनका जो एग्रीमेंट है ना, वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर.
जी
अगर मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ तो वो गाना उनका लाइफ टाइम होकर रह जाएगा, मेरे पास एक पेनी नहीं आएगी, एक रुपया नहीं आएगा, सारे राइट्स उनके पास होंगे. अगर आपको ये सब देना है तो दे सकते हो भाई. अगर आपने, आप चाहते हो कि आपने कोई घर बनाया बड़ा सा, आपको उससे बहुत प्यार है
जी.
और कोई और आके बोल रहा है कि ये ले पैसे और ये मुझे दे दे, तो आपने अगर देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो, अगर आपने उस घर में रहना है लाइफ टाइम और उस घर को बनाते हुए आपने 100 घर और बनाने हैं तो उसमें रहो और 99 और बनाओ.
आप कैसे देखते हैं ये म्यूजिक फील्ड को आगे जैसे ग्रो करते हुए, नए क्रिएटर्स या नए लोग जैसे आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मार्केट है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे?
अपॉर्चुनिटीज़ यही है कि आप लगे रहो इसमें, राइटिंग में, म्यूज़िक में लगे रहो. आजकल लोग बोलते हैं कि कैसे म्यूज़िक, अब तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है हर एक सिटी में. 10 साल पहले नहीं होता था, या उतने पैसे नहीं होते थे अपने पास कि वो टाइम पे कि हम जा सकें बड़े स्टूडियो में जाके कि डाल सकें, और कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हम स्टूडियो के अंदर जाके करें क्या.
जी
स्टूडियो के अंदर अगर मान लो आपके पास पैसा भी होता उस टाइम पे, तो अगर आप स्टूडियो के अंदर अकेले पहुंच भी गए पैसा देके, आपको पता ही नहीं है कि माइक के आगे कैसे खड़े होना है. अगर वो आपको वहाँ पे आधा घंटा समझाने में ही लगा रहेगा तो आप रिकॉर्ड क्या करोगे.
करेक्ट.
तो आज की डेट में आपके पास ये नॉलेज है कि यूट्यूब से आप सीख सकते हो कि माइक के पास कैसे रहना है, माइक से कितना दूर रहना है, माइक पे कैसे स्पीड करना है, स्टूडियो कैसा दिखता है अंदर से, इंजीनियर क्या होता है, साउंड इंजीनियर क्या होता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, रिकॉर्डिस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं, ताकि वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज ना हो. ये सब चीज़ें आप घर से स्टडी कर सकते हो आज की डेट में. मेरा ये मानना है कि यूट्यूब ने मुझे भी बहुत हेल्प किया, ये सब चीज़ें तो मैंने यहीं से सीखी ना.
जी, जी.
तो मुझे तो यहाँ आके पता चला कि स्टूडियो क्या है. यहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरे भैया ने, ही मैंने बताया, तो वो लेके गए थे स्टूडियो में, क्योंकि वो जाते रहते थे एज एन एक्टर, वो डबिंग में जाते थे, डबिंग आर्टिस्ट थे तो वो भी करते थे. तो वो मुझे उन्होंने बता दिया कि गाइड कर दिया, नहीं नहीं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं. थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो गया उनके साथ स्टूडियो में. पहले दिन नर्वस था मैं बहुत, मैं सोच रहा था कैसे गाऊंगा माइक के सामने, कैसे गाऊंगा, कैसे रिकॉर्ड होता है. मुझे नहीं पता ना अभी कितना ज़ोर से गाना है, कितना स्लो गाना है. तो अभी वहाँ पे मैं जब पहुँचा, 15 मिनट हुए, इतना कंफर्टेबल फील हुआ कि भाई अच्छा ऐसा रिकॉर्ड होता है, ऐसा स्टूडियो होता है, ये होता है. तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि लोग इस तरह से अपना जो नॉलेज है वो ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, बाकी और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, हर चीज़ की रील आती हैं, एडिटर्स की रील आती हैं, DOPs के लिए आती हैं कि ये लाइटिंग कैसे करें, ये कैसे करें. ज़रूरी नहीं कि रैप के लिए ही वहाँ पे नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है ना. आपको क्या बनना है वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो. तो वहाँ से वो अप्रोच कर सकते हैं कि सीखना स्टार्ट करें, अपना जो आउटपुट है, अपना जो गाना है, वो फिर स्टूडियो में रिकॉर्ड करें. वो रिकॉर्ड करने के बाद YouTube प्लेटफॉर्म है ही आपके पास, वो आपको 5 मिनट लगेंगे क्रिएट करने में. आप क्रिएट करो, अपना नाम एक उसमें डाल दो, उस पर अपलोड करो और Instagram वगैरह पे शेयर कर दो अपने आगे पीछे लोगों को कि ये ट्रैक आउट हो रहा है, ये ऐसा ऐसा. तो आपका कंटेंट अच्छा होगा, वो चलेगा, वो निकलेगा, लोगों तक पहुंचेगा. ये मत सोचो कि 10 व्यूज़ आ रहे हैं, 15 व्यूज़ आ रहे हैं, 20 व्यूज़ आ रहे हैं. मेरे भी आए थे पहले गाने पे 50 व्यूज़, तो मैं उसमें घबराया नहीं, घबराने वाला गया था. 50 व्यूज़ मतलब कि मेरे को 50 लोग देख रहे हैं.
जी करेक्ट,
समझ रहे हो आप, 50 लोग मेरे को देख रहे हैं, तो 50 कम है स्टार्ट में. मेरे को लग रहा है कम है, वो नंबर है 50 सिर्फ इसलिए, बट जब वो 50 लोग आपके कमरे में या हॉल में फिट हो जाएंगे ना,
करेक्ट,
आपकी हालत टाइट हो जाएगी, 50 लोगों को खुश कैसे करूं अभी। तो इसका मतलब है आपने 50 से स्टार्ट किया तो आप 50 को खुश कर रहे हो, आपने 50 को देखने लायक कुछ दिया, सुनने लायक कुछ दिया, तो आप उसमें लगे रहो। वो 50 के 100 150 5000 1,00,000 कब होंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो ये लगे रहो इसमें और क्रिएट करते चलो,
बिकॉज इसमें वही होता है मोटिवेशन लोगों के अंदर ना चली जाती है,
मोटिवेशन चली जाती है
कि मेरे को से 10 लोग देख रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं, पर मुझे लगता है कि चलो जितने भी लोग देख रहे हैं आप कुछ इस कुछ बना रहे हो, लाइक यू आर दैट मच केपेबल कि आप अपना दम पे कोई एक चीज बना सकते हो, विच यू कैन बी ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ कि अरे इतना तो दम रखता हूँ भाई।
जैसे मैंने आपको बताया तो वो 5,00,000 भी हो सकते हैं, 50,000 कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से उस चीज़ को बनाया है, बट वो चीज़ आपकी है, आप उसको इसलिए बना रहे हो कि वो आपकी है, तो ऐसा बनाओ उसको और उसको अपलोड करो और उसको शेयर करो मार्केट में। ये मत देखो कि कौन शेयर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मेरे साथ भी बहुत होता है कि लोग शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा फील होता है कि शायद से ये मेरा है दोस्त है या इसने शेयर करना चाहिए था बट फिर भी वो नहीं कर रहा था, बट उसको माइंड मत दिमाग में मत रखो कि आपके आस पास 10 लोग हैं तो वो शेयर नहीं कर रहे, आपको वो 100 लोग मिलेंगे जो आपको जानते नहीं है बट आपका काम पसंद कर रहे हैं, वो शेयर करेंगे तो आपको डबल खुशी होनी चाहिए उस चीज़ की कि आपको बाहर वाले, क्योंकि साथ वाले तो कभी अप्रिशिएट करते नहीं है, आपको पता ही है वो पीछे चाकू मारने में लगे रहते हैं
जी। पर मुझे तो वही लग रहा है कि चाहे आपको 10 लोग देखे 5 लोग देखे, जो आपने बनाया ना यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ, और बहुत खुशी होनी चाहिए कि इतना तो दम रखते हैं।
हाँ बस कहीं से तो स्टार्ट करना है ना,
स्टार्ट तो
करना है ना कहीं से,
लोग तो सिर्फ सोचते हैं, सोचने में अटक जाते हैं,
बस यही बात है। वो जो सोच है, जो आपने सोचा है ना, वो लिखो या वो बनाओ या वो एडिट करो या कुछ भी करना है, वो आप मोबाइल फोन आपके पास है, अगर मोबाइल फोन नहीं है, जॉब वॉब करो थोड़ी सी, जॉब से थोड़ा सा पैसा आएगा उससे फोन लो, फोन स्टार्ट करो अपना और कर सकते हो।
आपका राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, लाइक व्हाट्स द थिंग कि आपको मोटिवेट करता है कि मेरे को इस टॉपिक पे लिखना है या ऐसे लिखना है?
मूड पे डिपेंड करता है मेरे कि मैं आज किस मूड में हूँ या किस जोन में हूँ। अगर मैं यहाँ से अभी हैप्पी मूड में जाऊँगा
जी,
तो अगर मेरा मूड है बैठ के थोड़ा सा ग्रूव करता हूँ बीट्स पे, तो उस पर कुछ लिख दूंगा। हैप्पी मूड पे तो हैप्पी कोई ट्रैक लिख लूंगा, है ना, कोई क्या बोलते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप का हो गया, जैसे आपको फंकी पसंद है या R&B पसंद है, वैसा कुछ लिख लिया। सैड है तो सैड ब्रेकअप वाले ब्रोकन हार्ट सैड म्यूजिक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है, बट इसमें यही है कि अगर जब बैठते हैं हम सुनने के लिए तो बीट्स मैं सुनता हूँ, तो अगर बीट्स नहीं है तो एक जोन होता है मेरा कि सैड मूड है, तो मैं सैड वो शायरी में लिखता हूँ।
ओके,
है ना, क्योंकि आपके पास म्यूजिक नहीं, आपके पास कुछ नहीं है,
हाँ,
तो आपको एक टॉपिक चाहिए
जी,
ठीक है ना, ब्रेकअप किस रीजन से हुआ था या ब्रेकअप क्यों हुआ था, ब्रेकअप हुआ था मान लो इस टॉपिक पे लेना आप,
हाँ,
तो आप उस टॉपिक को पकड़ो और उसमें से एक आप स्टोरी क्रिएट करो माइंड में कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो उसमें आप स्टार्ट करो, एक लाइन लिखो
जी
कि दिल टूटा मेरा मैं हूँ आशिक तेरा, तो ऐसी एक लाइन लिखो, उसके बाद आप उसको राइम करते चलो, राइम करते चलो, राइम करते चलो, और लिखाई अपनी अच्छी करते चलो, है ना
जी,
कि जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा लोगों को पसंद आएगा, तो वही कोशिश है कि अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं।
तो
और चल रहा,
आप रिसर्च कैसे करते हैं, आप किसको सुनते हैं या किसका लिखा हुआ आप ज़्यादा पढ़ते हैं?
एक्चुअली पढ़ता नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ आर्टिस्ट को बहुत सारे, मैं तो मल्टीपल आर्टिस्ट को सुनता हूँ, मतलब हर किसी को सुन ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके बोल दूँ कि भाई मैं उसको नहीं सुनता उसको नहीं सुनता, हर किसी को हर किसी ने सुना हुआ है, जो बोलता है नहीं सुना हुआ वो नहीं, शायद से वो किसी और प्लेनेट से होगा तो मुझे लगता है कि जो इस वर्ल्ड में है ना उसने मतलब कि पुनीत सुपरस्टार को भी देखा है तो उसने मतलब कि शाहरुख खान को भी देखा है, सबको देखा है उसने, तो वो बस वो बताना नहीं चाहते कि हम ये कंटेंट भी देख रहे हैं, क्योंकि लोग वहाँ से जज करना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या देख रहा है, ये क्या देख रहा है, तो हमने देखा, हर किसी को सुना हुआ है। तो मैं ज़्यादा, मेरे को पंजाबी पसंद है, तो मैं जम्मू से हूँ जैसे, तो वहाँ पे मेरे वहाँ पे डोगरी चलती है,
ओके,
तो मेरी डोगरी लैंग्वेज है वहाँ की, होम टाउन की, तो मैं उस लैंग्वेज में करता हूँ, और उसके अलावा मैं पंजाबी में करता हूँ, और मैं हिंदी में रैप करता हूँ, तो मेरा लिखने का और ये मेरा जो भी है मेरा सुनने का, जो मैं अनडिस्कवर्ड आर्टिस्ट है ना जैसे, तो वो मैं ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि ये बाकी जो मेन आर्टिस्ट थे ना वो सारे कमर्शियल हो चुके हैं, उनको आप सुनोगे तो आप फिर कमर्शियल ट्रैक जैसा ही माइंड आपका बना रहेगा, या आप मतलब कि कुछ उससे अलग नहीं सोच रहे। अगर आपको कुछ अलग बनाना है या अलग कुछ करना है तो अलग देखना पड़ेगा, अलग सुनना पड़ेगा, या तो आपको अलग शांत कहीं पे जाना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आप खुद में क्या हो, या आपकी खुद की स्टोरी क्या है, आपके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि आपके अंदर ही इतनी स्टोरीज है ना, तो आप वो स्टोरीज लिख लोगे ना, वो आपके गाने खुद में ही ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि आपकी हर रोज़ की जो भी लड़ाई है, आपका स्ट्रगल है, हर दिन का अलग है
जी।
कभी पैसे का है, कभी खाने का है, कभी लड़ाई झगड़े का है, कभी ब्रेकअप का है
जी,
समझ रहे हो, कभी काम का है, कभी डिप्रेशन का है, कभी स्ट्रेस का है, कभी टेंशन का, तो ये सारे टॉपिक्स ही हैं।
करेक्ट करेक्ट,
ये सारे टॉपिक्स हो गए, ये टॉपिक्स पे तो ये तो आपकी स्टोरी हो गई ना।
हाँ।
तो आप अपनी स्टोरी बता सकते हो इन टॉपिक्स पे।
हाँ।
अगर इसके अलावा आपको साउंड एक्सप्लोर करना है तो आप मल्टीपल आर्टिस्ट को सुन सकते हो, बाहर के आर्टिस्ट हैं बहुत सारे, इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आप एक्सप्लोर करो, सुनो, हर किसी को सुनो, बट उसको इम्प्लीमेंट मत करो कि उसकी तरह ही आप लिखना स्टार्ट कर दो,
आपका अपना टच होना चाहिए। हाँ,
मतलब कि जैसे कि मैं किसी को सुन रहा हूँ तो मैं उसी रिदम में ना बना दूं।
करेक्ट,
ऐसा हाँ। भी होता है ना, मैं जो गुनगुना रहा हूँ,
हाँ।
मैं गुनगुना रहा हूँ कुछ, अगर तो मैं उसी को गुनगुनाते गुनाते अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लिरिक्स आगे मतलब एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो वो तो वही गाना हो गया ना
जी।
उसको सुनो और उसको डाइजेस्ट करो और सोचो कि इससे बेटर मैं क्या बना सकता हूँ, फिर लिखो। अगर उसने कुछ ऐसा बना दिया सैड ब्रोकन कि भाई क्या लिख दिया, आग में जलते दिए या कुछ भी लिख दिया, तो हाँ। आप सोचो कि मैं इससे ऊपर क्या लिख सकता हूँ, आग से ऊपर क्या लिख सकता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, कि मेरे दिल में क्या हुआ था। तो अपना इनपुट डालो, अपना कंटेंट डालो और खुद में खुद को देखो और खुद का कंटेंट लिखो, और ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से मैं सीखता हूँ और बाकी जो आर्टिस्ट हैं बाहर के वो मैं सुनता हूँ, मल्टीपल आर्टिस्ट हैं बहुत सारे।
मैं ना आपसे सिर्फ एक वीडियो और देखना चाह रहा हूँ तो मेरे दिमाग में है, जैसे कि आप जम्मू से है ना, तो मेरे को है कि आप एक जम्मू में प्रॉपर एक म्यूजिक वीडियो आप बनाए।
ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मेरा गाना रेडी है एक्चुअली, ये मैं बता दूं, एक्चुअली जो मेरा गाना है ना, मैंने बहुत पहले लिख दिया है, 3-4 साल पहले, मतलब 2019 में ही लिख दिया, आई थिंक 5 साल हो गए अब तो।
ओके,
तो वहाँ से मैंने गाना लिख दिया हुआ है, उसमें मेरे पूरे जम्मू की बात है, तो उसमें एक्चुअली एक ट्रैक नहीं है, वो 2 ट्रैक हैं, तो उसमें मेरे जम्मू का पूरा जो भी होगा वो सब उसमें दिखेगा, पूरा जम्मू सिटी दिखेगा, तो मेरा जो जम्मू का टच होगा, जो दुकान है जहाँ मैं जाता था, तो वहाँ का वो सब चीज़ें दिखेंगी, जो मेरे दोस्त हैं वहाँ के, जिनके साथ मैं बैठता उठता, जहाँ पे मैं घूमता, जहाँ पे गेड़ी वेड़ी मारता, या जो भी है जिनके साथ मैं खेलता कूदता, जो भी है, तो वो सब चीज़ें उसमें आपको दिख सकती हैं, क्योंकि वो मैंने गाना बना दिया है, तो वहाँ पे अभी शूट करने कब मिलेगा, अब देखते हैं कि मतलब कब मूड बनता है कि वहाँ जाके अभी शूट करूँ मैं, बट मेरा मन तो बहुत है कि जल्दी वहाँ पर शूट हो जाए और वो वीडियो मैं सबके सामने लेके आऊँ।
अभी मैं चाहूँगा कि आपका जो गाना है वो आप कोई भी गाना हो, जैसे जो आपके दिल के बहुत करीब हो, चाहे आपका लेटेस्ट हो, आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए।
ठीक है, ये लोंडे भारी यहाँ लोडेड है गन्स, देते ना फक्स, 2 गुना कर देंगे पैसा और वक्त, 4 गुना गेम में डाले ले रख, ताए ना लग से बोले तो हक से, चोरी चकारी नहीं छोटे हम करते, खाते हम भर पेट, जाती अब घर पे, दे देंगे जान, दे देंगे दीन, कंधे पे अपने भी होगा अब सीन, हम ही है शाम सपेरा और बीन, छाती से गाते हम साउंड क्लीन, बैगी है जीन, बंदी है लीन, ड्रीम्स को ऊपर रख, भगा दे नींद, यो लेट्स गो वर्स।
थैंक यू सो मच गाइस, इट वॉज लवली हैविंग वर्स भाई ऑन द शो।
थैंक यू ब्रो,
हमारा पहला पॉडकास्ट था, आई वांट टू थैंक हिम कि वो हमारे हमारे लिए आए हैं।
अरे ऑलवेज देयर फॉर यू,
एंड प्लीज गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी नायाब। अभी हम और भी कंटेंट बनाते रहेंगे भाई के साथ, वापस से फिर हम कोलैबोरेट करेंगे।
थैंक यू सो मच, जैसे भाई का चैनल अभी बी नायाब करके अभी आ रहा है, तो आप मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा हमारा तो वो आप कमेंट करें, और मेरे गाने सुनते रहे। माय नेम इज वर्स, लेट्स गो।